महाबंध पुस्तक सातवी लेक्चर नंबर दो नमः सिते प्रणीतं तं बन्धतत्त्व प्रकाशकं महाधवल विख्यातं महाबन्धं नमाम्यम्। यह श्री भगवान भूतबली भट्टारक प्रणीत महाबन्ध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल। उसमें सातवीं पुस्तक में चौथा प्रदेश बंध अधिकार चल रहा है और अभी हम यहाँ महाबंध का सारांश पढ़ रहे थे शुरुआत में। उसके पृष्ठ संख्या नौ पढ़ेंगे यहाँ से। कल हमने जो करेक्शन किया था वहां से आगे पढ़ेंगे। देखो हमने ये बात वहां लिखी है सेकंड पैराग्राफ में कि इस विशेषता का तीसरी चौथी लाइन, इस विशेषता का उल्लेख भी यहाँ किया गया है कि अप्रशस्त ध्रुवबंधी प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग को चाहिए सम्यक मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व के सन्मुख होकर बांधता है। हाँ, और प्रशस्त ध्रुवबंधी वाली प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग को सम्यक मिथ्या दृष्टि सम्यक्त्व के सन्मुख होकर बांधता है, ऐसा ही चाहिए। यानी ये सम्यक मिथ्या दृष्टि मार्गणा का ये कथन था, उन्होंने ऐसे ही लिख दिया तो उसमें से कुछ अर्थ बराबर नहीं होता है और उसमें मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की बात लिखकर भी घोटाले हुए हैं बहुत। तो हमने वहां दो वाक्य और लिख दिए, यहाँ सम्यक मिथ्या दृष्टि मार्गणा में उत्कृष्ट अनुभाग का कथन है इसलिए उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट का अंतर नहीं है। यहाँ सम्यक मिथ्या दृष्टि मार्गणा में उत्कृष्ट अनुभाग का कथन है, अनुभाग बंध का, इसलिए उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट का अंतर नहीं है। अनुभाग बंध उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतर नहीं है। हाँ, यानी उस मार्गणा के लिए ये लागू होता है। अब ये तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे नौ नंबर के पृष्ठ पर। यद्यपि सर्वघाती और देशघाती का भेद घाती कर्मों में किया जाता है, किंतु अघाती कर्मों को घाती प्रतिबद्ध मानकर चतुर्थ पुस्तक में चौथे और पांचवें अनुभाग किए ना, निषेक प्ररूपणा और स्पर्धक प्ररूपणा रूप में दो भेद किए गए हैं। आठों कर्मों के जो देशघाती स्पर्धक कहे गए हैं उनकी प्रथम वर्गणा से लेकर निषेकों का विचार किया गया है। एक्चुअली जो सर्वघाती प्रकृतियां होती है उनमें देशघाती स्पर्धक ही नहीं होते हैं। घाती प्रतिबद्ध मानकर ऐसा और लिखे और आठों कर्मों के लिखा है। यानी वो कथनचित उसको घाती भी कहा था क्योंकि प्रतिजीवी गुणों का घात करता है, ऐसा भी वहां स्टेटमेंट आया था। अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या लिखना चाहते हैं। प्रत्येक कर्म परमाणु में अनंतानंत शक्त्यंश उपलब्ध होते हैं, यानी उसका विभाग प्रतिच्छेद कहीं नहीं, अनुभाग का वो अंश, अनुभाग के शक्ति अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। अनुभाग में ऐसे कर्म परमाणुओं का कथन किया जाता है जिनमें समान अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं, उसको वर्गणा कहते हैं। इन कर्म परमाणुओं के प्रत्येक वर्ग और उनके समुदाय की वर्गणा संज्ञा है। ये बात यहाँ क्लियर नहीं होती है, जिनमें समान है ऐसे वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। हाँ, बहुत विस्तार से बहुत बार लिया था, पढ़ाते समय भी बहुत विस्तार से उसको पढ़ाया है। तो अनुभाग की अपेक्षा एक एक वर्गणा में अनंतानंत वर्ग होते हैं। इस प्रकार के अनंतानंत वर्गणाओं का एक स्पर्धक होता है। पहली वर्गणा से दूसरी तीसरी आदि वर्गणा के प्रत्येक वर्ग में यानी एक एक परमाणु में एक एक प्रतिच्छेद अधिक होता है, यानी एक एक अविभाग प्रतिच्छेद। अविभाग लिखना ठीक है। इस प्रकार अंतिम वर्गणा तक जानना चाहिए। इसमें यह भी है, प्रत्येक एक स्पर्धक की अंतिम वर्गणा से दूसरे स्पर्धक की प्रथम वर्गणा तक बहुत बड़ा गैप होता है बीच में अविभाग प्रतिच्छेद में। वो जो दो गुना होता है ना, पहले एक स्पर्धक की प्रथम वर्गणा से दूसरे स्पर्धक की प्रथम वर्गणा में दो गुना, फिर तीन गुना, चार गुना, पांच गुना, इस तरह से चलेगा। अघाती कर्मों में प्रशस्त और अप्रशस्त रूप से अनुभाग दो प्रकार का है। अभी उसमें प्रशस्त अप्रशस्त भेद किए। एक्चुअली अनुभाग दो प्रकार का नहीं कहेंगे हम, वो प्रकृतियां दो प्रकार के होगी। प्रशस्त अनुभाग अमृत के समान और अप्रशस्त अनुभाग विष के समान माना गया है। ये चार चार भाग है, उसमें से वो मैक्सिमम की बात है। यहाँ आखिर का अमृत है और वहाँ आखिर का हलाहल है। यानी ये भी बराबर कथन नहीं है बराबर। यानी ऐसा चाहिए, अघाती कर्मों में प्रशस्त और अप्रशस्त रूप से प्रकृतियां दो प्रकार की हैं। प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग, बीच में प्रकृतियों का लिखो, प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग, सेकंड लाइन सेंटेंस, प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग। अब यहाँ चारों नाम लिखे लिखने हैं, गुड़, खांड, शर्करा, कोमा कोमा देना, अमृत के समान लिखा। और गुड़, खांड, शर्करा, अमृत तो वहां लिखा ही है, अमृत के समान तो लिखा ही है। और अप्रशस्त यहां लिखना, प्रकृतियों का अनुभाग। अब यहाँ विष के लिखा है ना, तो विष और के बीच में लिखना, पहले नीम कांजीर, विष और हलाल। अनुभाग के बाद लिखना नीम कांजीर, फिर विष और बाद में हलाहल के समान माना गया है। माना गया ने उसको डिस्क्राइब किया, क्योंकि घाती कर्मों की सभी प्रकृतियां पाप रूपी होती है। ये क्योंकि शब्द नहीं चाहिए हमको, क्योंकि उससे उससे कुछ बात लगती नहीं है, क्योंकि शब्द नहीं चाहिए वहां। बस घाती कर्मों की सभी प्रकृतियां पाप रूपी होती है, बस इतना ही लिखेंगे तो चलेगा। पर उसके नाम उन्होंने नहीं लिए हैं, फिर भी चलो जाने देते उसको। लता, दारू, अस्थि, शैल, ये हमको लिखने की जरूरत नहीं। उन्होंने क्या गलत किया उसको करेक्शन करेंगे। सादे अनादि ध्रुव अध्रुव बंध रूप प्ररूपना की गई है। इसमें यही विशेष है कि भव्य जीवों में ध्रुव बंध नहीं होता है। शेष मार्गणाओं में सादी तथा अध्रुव बंध होता है। स्वामित्व प्ररूपणा के अंतर्गत प्रत्ययानुगम की अपेक्षा छह कर्म मिथ्यात्व प्रत्यय, असंयम प्रत्यय और कषाय प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय ने उसका कारण महाबंध में बार बार यह कहा गया है कि औदयिक भाव बंध के कारण है। वास्तव में मोहजनित औदयिक भाव ही बंध के कारण है। प्रत्यय ने वो कारण, प्रत्यय ने जो है पुराने कर्मों का उदय वो उसको भी प्रत्यय कहेंगे, निजीव के भाव को भी प्रत्यय कहेंगे, द्रव्य प्रत्यय भाव प्रत्यय आश्रमों को ही कहते हैं बंध के कारण। ऐसा है ना, अभी ज्ञानावरण का बंध है तो ज्ञानावर कर्मों का बंध कब से, तो अनादि से, यानी अनादि सादि ध्रुव और अध्रुव ऐसे चार भेद करते हैं। और उसमें केवल वो अनादि का बंध ऐसा नहीं लेना है, उसमें उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की बात लेना है। ज्ञानावरण का उत्कृष्ट अनुभाग बंध कब होगा, अभी हम अनुभाग की बात भूल गए ना, दसवें में तो मिनिमम होगा, अप्रशस्त प्रकृति है। मैंने इसीलिए बोला कि अभी बहुत दिन हो गए ना हमारे, तो उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट तो कभी भी सादी होगा उसको, कभी उत्कृष्ट कभी अनादि से होता है, तो जघन्य कब होगा, दसवें के अंतिम समय में। तो जघन्य के लिए वो अनादि का नहीं है, जघन्य के लिए सादी ही भंग होगा, क्योंकि जघन्य दसवें के अंत में हुआ और वो भी क्षपक में होगा क्योंकि वहां अनुभाग मिनिमम होगा, है ना। और बाकी सब, और वो कैसा है अभी अनुभाग का बंधन, अध्रुव है भव्यों के लिए, इस तरह से उसको लेना अध्रुव। अभव्य में क्या होगा, उनका तो बंधन हाँ ध्रुव ही रहेगा, कौन सा ध्रुव रहेगा, उनके तो जगह ने कभी होने वाला ही नहीं है, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट होते रहेगी उनके, या उसको कहेंगे अजघन्य कायम है उसका, ऐसा कहेंगे। उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट में तो फर्क पड़ेगा, कायम जब तक जघन्य नहीं हुआ तो अजघन्य जो है अनादि से है और ध्रुव रूप से बन रहा है। लास्ट पैराग्राफ, महाबंध के छठे और सातवें भाग में प्रदेश बंध का विशद वर्णन है। कर्म रूप से परिणत पुद्गल स्कंधों की संख्या का अवधारण परमाणु रूप से होना कि कितने परमाणु कर्म रूप से परिणत हुए उसे प्रदेश बंध कहते हैं। जीव के समीप योग स्थानों के द्वारा बहुत प्रदेशों का आगमन होता है, अतः योग स्थान प्ररूपणा के अंतर्गत दस अनुयोग द्वारों में प्रतिपादन किया गया है। वस्तुतः आठ कर्मों के बंध के समय कर्म परमाणुओं का सबसे अल्प भाग आयु कर्म को मिलता है, यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब की बात, उससे विशेष अधिक नाम कर्म को और उससे भी विशेष अधिक गोत्र कर्म, नहीं नाम और गोत्र को समान मिलता है। हाँ ऐसा लिखना, उससे विशेष अधिक नाम कर्म को और गोत्र कर्म को मिलता है।
उससे अधिक लिखा है
वो नहीं चाहिए, उससे भी विशेष अधिक ऐसा लिखा वो नहीं चाहिए, नाम कर्म को और गोत्र कर्म को तुल्य मिलता है लिखो, समान मिलता है लिखो, चलेगा। उससे ज्ञानावरण दर्शनावरण तथा अंतराय कर्मों को विशेष अधिक भाग मिलता है, इसमें बराबर लिखा हूं, उससे भी विशेष अधिक वेदनीय कर्मों को मिलता है। मोहिनी कहाँ डालो, यह स्वाभाविक है कि जिस कर्म की जैसी स्थिति है उसे वैसा ही भाग उपलब्ध होता है। स्थिति के अनुसार नहीं होता। एक्चुअली मुनि का ज्ञानावरणादि के द्रव्य से बहुत द्रव्य मिलता है, यानी वेदनीय को सबसे ज्यादा मिलता है, मुनि का उसमें बीच में मिलता है। पहला भाग मुनि को, फिर यानी पहला अधिक की बात करेंगे तो सबसे पहला उत्कृष्ट भाग तो वेदनीय को, बाद मुनि को। यहाँ लिखा है ना, उससे भी विशेष अधिक वेदनीय कर्म को मिलता है, उसके पहले इसको इस वाक्य को डालना है। हाँ, वहाँ वो कुछ साइन करके उस वाक्य को ले लें।
अच्छा,
नीचे से दूसरी लाइन में, उससे भी अधिक वेदनीय कर्मों को मिलता है लिखा है ना, उसके पहले वो मोहनीय का ज्ञानावरण के द्रव्य के बहुत द्रव्य मिलता है, ऐसा लिखा है। मुनि का नहीं, एक्चुअली मुनि को चाहिए, मुनि को ज्ञानावरणादि के द्रव्य से बहुत लिखा है तो विशेष अधिक द्रव्य मिलता है। कर्णानियों का अभ्यास नहीं होने से बड़े बड़े विद्वान कहते हैं। और उससे विशेष अधिक वेदनीय कर्म को मिलता है। अब यहाँ स्थिति के अनुसार नहीं, मुनि की स्थिति तो 70 कोड़ा कोड़ी है और वेदनी की तो 30 है, तो उसमें ऐसा नहीं है, वो तो अन्य उसका कारण है। ये भी निकाल दो वाक्य, हाँ यह भी स्वाभाविक है माना। आगे 10 पेज पर आए, उत्तर प्रकृतियों में कर्म परमाणुओं का वितरण यानी उनका डिस्ट्रीब्यूशन, कर्म बंधक के समय ज्ञानावरणीय कर्म को जो एक भाग मिलता है वह चारों भागों में विभक्त होकर अभिनिवोधि ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मनोपरि ज्ञानावरण, इन चार कर्मों को प्राप्त होता है। अब यहाँ लिखना है ये करेक्शन, ज्ञानावरणीय कर्म का जो देशघाती का भाग मिलता है, ऐसा कि सर्वघाती तो 5 में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जो एक भाग मिलता है ना, यानी 8 में से जो उसके खाते में आएगा, 8 कर्मों में से उसके खाते में जो एक भाग आएगा उसमें से देशघाती परमाणु, देशघाती द्रव्य ऐसा लिखो, उसमें से एक भाग मिलता है, वह लिखा है ना, हाँ उसमें से
एक भाग मिलता है उसके,
हाँ,
आगे।
उसके आगे वह निकाल दो और यहाँ डालो उसमें से देशघाती द्रव्य, चार भागों में विभक्त होकर अभिनिवेदित ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपरे ज्ञानावरण, इन चार कर्मों को प्राप्त होकर। ये 10वां पेज है शुरुआत का जो इंट्रोडक्शन वाला, इनमें विशेष रूप से यह ध्यान देने योग्य है मोहनीय कर्म को उपलब्ध देशघाती भाग 2 भागों में विभक्त हो जाता है, कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय। कषाय वेदनीय का द्रव्य 4 भागों में यानी क्रोधमान मायो और नो कषाय वेदनीय का 5 भागों में विभक्त होता है, क्योंकि एट ए टाइम 5 ही का बंद होता है, वैजू गुप्त संघ निरंतर बंधेगी, एक युगल कोई तो बंधेगा और एक वेद बंधेगा, और मुह्य कर्म को जो सर्वघाती द्रव्य प्राप्त होता है। देखो नौ कषाय एट ए टाइम पांच ही बनते हैं, वैजू गुप्त तो ध्रुव बंदी है, एक युगल बंधेगा हास्यरति या रतिशोक और एक वेद बंधेगा, उनमें से एक भाग यानी जो सर्वघाती द्रव्य प्राप्त होता है उनमें से एक भाग चार संज्वलन कषाय में और दूसरा एक भाग बारह कषाय में और मिथ्यात्व में विभक्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। सर्वघाती द्रव्य प्राप्त होता है वह सत्रह में विभाजित हो जाता है, सर्व प्राप्त होता है ना, वह मिथ्यात्व और सोलह कषायों में विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है, नहीं सत्रह भाग होते हैं उसके, उनमें से ये लिखा है ना वहां से वो पूरा लिखा। हाँ विभाजित हो जाता है, ये विभक्त हो जाता है लिख रखेंगे तो भी चलेगा, वो हमने निकाल दिया, विभाजित हो जाता है लिख दिया। अब नया पैराग्राफ, जगन्य और उत्कृष्ट के भेद से प्ररूपना दो प्रकार की गई है, भोग से सभी प्रकृतियों का उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश बंद करने वाले जीवों का भाव औदयिक कहा गया है, भावानुगम की अपेक्षा भी भोग से यानी बंद क्यों होता है, औदयिक भाव से होता है, उसका कारण क्या है, उनके कौन सा भाव है, यानी वो प्रदेश बंद क्यों हो रहा है, तो औदयिक भाव से, सारे बंद औदयिक भाव से हो रहे हैं ना, स्थिति कहो प्रदेश कहो औदयिक भाव से, भावानुगम की अपेक्षा भी हो गया, भावानुगम की अपेक्षा भी ओग से सब प्रकृतियों के गुजगार अल्पतर अवस्थित और अवक्तव्य पद के बंधक जीवों का भाव भी औदयिक कहा गया है, यानी वो बढ़कर हो अल्पतर हो अवस्थित हो कैसा भी है बंध है तो औदयिक भाव है, जो कुल जीव राशि है उसमें सब प्रकृतियों के संभव सभी पदों के बंधकों का विभाग किया जाए तो कितना भाग किसको मिलेगा, यह विचार भागा भाग में किया गया है, सब पदों के बंधक जीवों का परिमाण अनंत कहा गया है यानी उनका प्रमाण, ये उन्होंने बीच में भिजगार अल्पतर की बात डाल दी है, ठीक है, पृथ्वी का एक जल का एक अग्नि का एक बादर पृथ्वी का एक बादर जल का एक और बादर अग्नि का एक जीवों में सब प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश बंद करने वाले जीवों का क्षेत्र लोक के असंख्यात भाग प्रमाण है, पृथ्वी का एक कैसे हो गए उसमें, पृथ्वी का सूक्ष्म पृथ्वी का एक तो पूरे लोक में है, हाँ बादर पृथ्वी का एक अगर उसको लेंगे तो ठीक है, ये बीच बीच में कोई भी वाक्य कहीं पर भी डाले हैं, ये पृथ्वी का एक जल का एक निकाल दो अग्नि का एक, एक मिनट उत्कृष्ट लिखा है या कुरुको उत्कृष्ट में बादर ही करेंगे तो असंख्या तो भाग ठीक है, अनुत्कृष्ट को नहीं लिया, हाँ ये रखो नहीं रखो रखो क्योंकि उसमें उत्कृष्ट करने वाले तो बादर ही जीव है, एक पृथ्वी कायिकों में उत्कृष्ट बंद करने वाले जीव लोक के असंख्या विभाग, क्यों, क्योंकि बादर पृथ्वी काय की उत्कृष्ट करेंगे,
पहले सिर्फ पृथ्वी
का, हाँ वो भी घटित होगा क्योंकि पृथ्वी का एक कहाँ, पृथ्वी का एक कहाँ है पूरे लोक में, उसमें से उत्कृष्ट कौन करेगा, बादर पृथ्वी का एक, वो कहाँ है लोक के असंख्या,
बरोबर, डबल क्यों किया?
क्योंकि मार्गणा दो ना है, मार्गणा दो होते हैं, एक पृथ्वी का एक, उसमें बादल पृथ्वी का एक, बादल पृथ्वी का एक पर्याय, ऐसे अलग अलग उसी के भेद होते हैं। जैसे हम तिर्यंच गति मार्गणा में तिर्यंच को कहते सामान्य, फिर पंचेंद्रिय तिर्यंच
सामान्य लेना क्या?
सामान्य
सामान्य में सूक्ष्म और बादल दोनों आ गया ना?
आने दो ना, परंतु सूक्ष्म जो उत्कृष्ट नहीं करेंगे, यहाँ उत्कृष्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, जगन्य कहना होगा तो उनका नंबर आएगा सूक्ष्म का, तो फिर कहेंगे पूरा लोक। इनमें नरकायु मनुष्य देवायु का निरंतर बंध संभव नहीं है। अब यहाँ बीच में प्रमाण वाली बात है, बीच में संख्या वाली है, क्षेत्र वाली, क्योंकि इनका बंध करने वाले अधिक से अधिक असंख्या जीव होते हैं। अभी इनमें तो नरकायु देवायु तो बनते ही नहीं है, ये जो बात बताई ना, इनमें नरकायु देवायु को तो निकाल दो तो ये स्टेटमेंट ठीक होगा। देखो मैं अभी पढ़ूंगी करेक्शन करके, इनमें मनुष्यायु का निरंतर बंध संभव नहीं है क्योंकि इनका बंध करने वाले अधिक से अधिक असंख्या जीव होते हैं। अब इनमें जब लिखेंगे तो अग्नि का एक में तो मनुष्य का बंध भी नहीं होगा, वहां पर भी ये बात घटित नहीं होती है। यानी कहीं का वाक्य उन्होंने कहीं लिख दिया है बस। अरे निकाल देंगे तो भी वो स्टेटमेंट अग्नि का एक के बारे में ठीक नहीं होगा। ऐसा लिखते ओघ में लिख सकते हैं, ओघ में नरकाय मनुष्य देवय को निरंतर बंध संभव नहीं है क्योंकि इनका बंध करने वाले अधिक से अधिक असंख्या जीव होते हैं, है ना? इन्हें ओघ में करो तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ रख सकते हैं हम। वैसे तो पहले वाक्य का और इसका कोई संबंध नहीं है क्योंकि एक जगह क्षेत्र लिख रहे हैं और एक उसका काल लिख रहे हैं, यहाँ पर काल की बात यहाँ बताना चाहते हैं। यहाँ ओग में लिखो, ओग में क्यों ओग से लिखो तो अच्छा बेटर है। आयु बंध का कुल काल अंतर्मुर्त होने से इनका निरंतर बंध संभव नहीं है, ये क्या? अच्छा ठीक है, सभी प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश बंध अपने अपने स्वामित्व के अनुसार होता है। महाबंध के सातवें भाग में विस्तार से क्षेत्र प्ररूपणा स्पर्शन काल अंतर्भाव तथा अल्पभूत्व के भंगों के रूप में विवेचन किया गया है। स्वामित्व में विशेषता यह कही गई है, मिथ्यात्व के अवक्तव्य बंध का सासाधन सम्यक्त्व से च्युत होकर जो प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि हुआ है वह जीव स्वामी है। पर किसका स्वामी? उत्कृष्ट का कि अनुत्कृष्ट का? वो तो कुछ लिखा नहीं है। अभी इसी में पृष्ठ 230 निकालो, क्या कहना चाहते वो भी ख्याल में आ जाएगा। क्या है बीच बीच के कोई प्रश्न पेजेस निकाल कर उसमें से कोई स्टेटमेंट्स लिख दिया है स्वामित्व मिथ्यात्व का कहाँ पर है? ये उत्तर प्रकृतियों के स्वामित्व की बात है ना? वह जीव भी स्वामी है। देखो क्या कहना, ये ऊपर से पढ़ेगी, ऊपर से पांचवी लाइन में, और ये स्वामित्व किसका है? तो वृद्धि बंध की प्ररूपना चल रही है, ये वृद्धि वृद्धि यानी जघन्य वृद्धि है, उत्कृष्ट वृद्धि है, कौन से प्रकार की वृद्धि है ये उसका प्रकरण चल रहा है। देखो ऊपर लिखा है, पेज के ऊपर क्या लिखा है, वृद्धि बंध। वृद्धि बंध में क्या आता है कि वो असंख्यात भाग आने के अनंत भाग आने के कौन सी वृद्धि कौन सी हानि उसका चल रहा था। अब यहाँ स्वामित्व में जो लिख रहे थे, स्वामित्व में उन्होंने क्या प्रश्न पहले पूछा उसको लिख, ऊपर से पांचवी लाइन, स्त्यांग वृद्धि त्रिक मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी चतुष्क की चार वृद्धि चार हानि और अवस्थित का स्वामी कौन है, तो कौन होगा वक्तव्य का कि जो ऊपर के गुण स्थानों में है और जो पहले या दूसरे में आया है वो उसका स्वामी होगा। अब इसमें मिथ्यात्व को निकालना है क्योंकि दूसरे वाला तो नहीं स्वामी हो सकता है, तो उसमें क्या कहेंगे, ऊपर के गुण स्थानों से चौथे पांचवें चले जाते हो जो कहीं भी जो मिथ्यात्व में आता है वो स्वामी है। उसमें एडिशनल क्या होगा, जो सासादन से मिथ्यात्व में आता है वो भी स्वामी है। अनंतानुबंधी के लिए वो स्टेटमेंट नहीं था, अनंतानुबंधी के लिए क्या कहेंगे, जो तीसरे से चौथे से या छठे से नीचे आए पांचवे छठे से वो अनंतानुबंधी का स्वामी होगा वक्तव्य। मिथ्यात्व के लिए क्या कहेंगे, दूसरे से भी और तीसरे चौथे पांचवे छठे से भी लगाना है ना, तो यहाँ क्या लिखा देखो आगे कि अवक्तव्य का स्वामी कौन है, संयम संयमासंयम सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व से गिरकर, यहाँ गुणस्थान नहीं बताए, संयम संयमासंयम के जो प्रथम समय में मिथ्या दृष्टि और सासादन हुआ वह उक्त प्रकृतियों के अवक्तव्य का स्वामी। इतनी विशेषता है कि हाँ मिथ्यात्व के अवक्तव्य का सासादन सम्यक से च्युत होकर जो प्रथम समय से मिथ्या दृष्टि हुआ है वह भी स्वामी है। और मिथ्यात्व के लिए वो सासादन में आने वाला वो नहीं ले सकते, मिथ्यात्व में आने वाला ही लेना पड़ेगा। तो ये जो वाक्य है यहाँ ये तो फिट ही नहीं होता है क्योंकि स्वामित्व में तो वृद्धि बंद के स्वामित्व में ही बात बताई है। और ये विशेषता की मिथ्यात्व के वक्तव्य का शासन मिथ्या वह जीव स्वामी वह नहीं वह भी लाना है, यानी ये भी बात
वहाँ
वृद्धि बंद के स्वामित्व में, हाँ स्वामित्व के आगे वृद्धि बंध के वह जीव भी स्वामी है, वह जीव भी स्वामी है क्योंकि ऊपर और भी चौथे, यानी तो यह विशेषता से कुछ प्रयोजन ही सिद्ध नहीं हो रहा। यानी कितने वाक्यों का दूसरे से एक दूसरे कोई संबंध ही नहीं है, बीच बीच में ऐसे कोई निकाले हैं परंतु उसकी मार्गणा क्या है, प्ररूपणा कौन सी है, उसका विचार किए बिना उसका कोई अर्थ ही नहीं हो जाता। आगे बंद करने वाले जीवों का सभी लोक क्षेत्र है, अभी केवल बंद करने वाला ऐसा लिखा है। तीन वृद्धि तीन हानि अवस्थित और अवक्तव्य पद के बंधक जीवों का जघन्य काल एक समय, अभी उसमें से काल की बात नहीं है, उत्कृष्ट काल अवली के असंख्यात विभाग प्रमाण है। अब यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट है कौन से कर्मों की बात है क्या है वो भी कुछ नहीं लिखी, ठीक है। सामान्यतः जघन्य अंतर सभी जीवों का एक समय है किन्तु उत्कृष्ट अंतर में भिन्नता है। अब ये भी अंतर है, वो वृद्धि का अंतर है कि भुजगार का है कि अल्पतर का है कि प्रदेश बंध का है कि उत्कृष्ट का है कि जघन्य का है कि अजघन्य का है, ये कुछ बात नहीं लिखी है। सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व या सासादन को अधिक से अधिक सात दिन रात प्राप्त नहीं होते, यानी उसका उत्कृष्ट अंतर कहेंगे। सम्य दृष्टि जीव देखो कोई जीव मिथ्यात्व में से औक्षणिक सम्यक तो प्राप्त करेगा चौथे गुण स्थान, तो सात दिन के अधिक अंतर जाएगा ही नहीं, सात दिन में तो कोई ना कोई करेगा ही करेगा, उसको उसका उत्कृष्ट कहते हैं। अब कोई सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में आ गया तो हो सकता है एक आया फिर दूसरा आया फिर तीसरा आया, लगातार अवली का संख्यात भाग तक भी आ सकता है, बाद में अंतर पड़ेगा ही पड़ेगा और अधिक से अधिक अंतर पड़ेगा तो सात दिन रात का पड़ेगा। यानी उसमें जैसे कोई ना कोई जीव सम्यक्त्व प्राप्त करता है औक्षणिक, वैसे कोई न कोई सम्यक्त्व से छूटकर मिथ्यात्व में भी आता
है, सात दिन
वो उसका अंतर। भावानुगम की अपेक्षा सर्वत्र उदयिक भाव है जो अनाहरक मार्गणा तक है, अभी यहाँ लिखा ना अनाहरक मार्गणा तक है, वो पहले भी ये वाक्य ऐसे ही आया था उसका उन्होंने गलत अर्थ किया था। मिथ्या दृष्टि असंगी जीवों में पंचेंद्रिय जीवों के समान अल्प बहुत्व का भंग है। मिथ्या दृष्टि के जो प्रदेश बंध स्थान होते हैं उतने को परिपाटी कहते हैं। अवस्थित बंध इसलिए कहलाता है, इस समय जो जीव जिन प्रदेशों को बांधता है उनको अनंतर पिछले समय में यानी बाद में घटाकर या बढ़ाकर बांधे गए प्रदेशों के अनुसार उतने ही बांधता है। ये घटाकर बढ़ाकर बांधे गए प्रदेशों के अनुसार नहीं है, जितने बांधता है उतने अनंतर समय में बांधता है, उसको अवस्थित कहते हैं। अब ये भी बीच में कहां से आया पता नहीं है, पता नहीं है कौन है देवेंद्र कुमार, मालूम नहीं है। और होगे तो भी कर्णानियों का अभ्यास नहीं ऐसा कहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे उत्कृष्ट पुस्तक के ऐसी प्रस्तावना नीमच लिखते थे, ये शास्त्री कौन है पता नहीं। कौन सी भी प्ररूपणा का कहीं पर भी कोई भी वाक्य बीच बीच में डालकर निकाल के वहां रखे, बस इतना ही किया।
चलो
हाँ ये निकालो उसमें से, अवश्य बंध इसलिए कहलाता है इस समय जो जीव जिन प्रदेशों को बांधता है, जिन प्रदेशों को नहीं जितने प्रदेशों को, उसको अनंतर पिछले समय में यानी बाद में उतने ही बांधता है, इतना ही लगता है। घटाएं बढ़ाकर बांधे गए प्रदेशों के अनुसार ये वाक्य निकाल देना, पिछले समय उतने ही बांधता है। हाँ घटाकर या बढ़ाकर बांधे गए प्रदेशों के अनुसार इतना सब निकाल देना, बंध के बाद बंध होना अवक्तव्य बंध कहलाता है। प्रायः सभी प्रकृतियों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, किसके लिए पिछले समय में हाँ घटाकर या बढ़ाकर बांधे गए प्रदेशों के अनुसार, हाँ ये इतना यहाँ तक कैंसिल करना, उतने ही बांधता है ये रखना। अभी यहाँ जो लिखा ना सभी प्रकृतियों का जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल अंतर्मूल, ये किसके लिए होगा, ये अल्पतर और भुजकार के लिए होगा, ये किसके लिए स्टेटमेंट है, ये तो ख्याल नहीं आ रही बात। हाँ ये पूरा वाक्य निकाल दो, ये प्रश्न चिन्ह लगाओ किस किस बारे में बता रहे हैं। नहीं वो वहां से देखना पड़ेगा ना, वक्तव्य है क्योंकि वृद्धि के बाद उसका प्रकरण आना चाहिए, किसके बारे में क्या है वो निकाल ही दो। कृष्ण नील कापोत लेशावले जीव सब लोक में पाए जाते हैं, भव्य जीव में ओक के समान भंग है, अभव्य मिथ्या दृष्टि असंगी जीव में मत्य ज्ञानी जीव के समान भंग है, किसके बारे में पता नहीं। महाबंध का प्रयोजन, महाबंध के लेखन का एकमात्र प्रयोजन जीवों को मौजूदा परिस्थिति का ज्ञान कराना है। जीव किस प्रकार अपने कर्तव्य से संसार के जेलखाने में पड़ा है, इस पराधीनता को जाने बिना कोई स्वतंत्रता का पुरुषार्थ कैसे कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं कि संयम तप त्याग का मार्ग स्वाधीन होने का उपाय है। आध्यात्मिक जागृति बिना यह संभव नहीं है, अतः उसका पुरुषार्थ करना चाहिए। चलो हाँ ये हीरालाल जयंती, ये तो सरे है एन उपाध्याय कुलचंद शास्त्री, ये तो कर्णानियों के जानकार है। प्राथमिक वक्तव्य महाबंध की सातवीं जिल्द के साथ एक महान साहित्यिक निधि का प्रकाशन संपूर्ण हो रहा है, इसके लिए उसके विद्वान संपादक पंडित कुलचंद जी शास्त्री तथा भारतीय ज्ञानपीठ के अधिकारियों को जितना धन्यवाद दिया जाए थोड़ा है। विद्वान पाठकों को ज्ञात होगा कि प्रस्तुत महाबंध आचार्य पुष्पदंत और भूतबली की अद्वितीय सूत्र रचना षटखंडम का ही छठा खंड है, इसके पूर्व के पांच अर्थात जीवोत्थान, खुद्दा बंध, बंध सामित्य, वेदना और वग्गना खंडों का संपादन व प्रकाशन कार्य भी विदिशा निवासी श्रीमंत सेठ सीताबराय लक्ष्मीचंद्र जी द्वारा स्थापित जैन साहित्य उद्धारक ग्रंथमाला द्वारा संपूर्ण हो चुका है। इनके जो पुत्र है ना राजेंद्र, वो हमें बार बार पूछ रहे ना ये धवला के हमको चाहिए सारे प्रवचन, क्योंकि धवला उन्होंने प्रकाशित किया। इस प्रकार पूरा षटखंडागम अपनी वीरसेन कृत धवला टीका और आधुनिक हिंदी अनुवाद सहित 16+7 23 जिल्दों में समाप्त हुआ है। यानी वो 16 धवला के भाग और 7 महाबंध के, इतना मिलकर ये षटखंडागम, जिनकी पृष्ठ संख्या 10,000 से ऊपर होती है। धवला टीका की श्लोक संख्या परंपरा अनुसार 72,000 श्लोक प्रमाण और महाबंध की 40,000 श्लोक प्रमाण मानी गई है। यदि अधिक नहीं तो इतना ही हम अनुवाद का प्रमाण मान ले तो इस पूरी प्रकाशित रचना का प्रमाण लगभग 2.25 लाख श्लोक प्रमाण हो जाता है। श्लोक का अर्थ 32 अक्षरों का एक श्लोक कहलाता है और वहाँ अक्षर नापे जाते हैं, अक्षर गिने जाते हैं, क्योंकि उस समय वो तो एक एक लाइन में कितने अक्षर लिखना इस प्रमाण से उसको नापे जाते थे। तो इतने हजार श्लोक प्रमाण रचना हुई ऐसा कहेंगे, क्योंकि हमें तो लगता है तो अरे ये तो गद्य में लिखा है, उसमें श्लोक कहाँ से आए। धवला का प्रथम भाग सन 1900 हाँ इन्हें उतने अक्षर श्लोक 32 अक्षर 72,000 श्लोक जब कहेंगे या 70,000 तो उसका अर्थ क्या है, तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 32 अक्षर। श्लोक का अर्थ है 32 अक्षरों का एक श्लोक होता है, हाँ तो उसको इंटू करना, और उन्होंने ओरिजिनल लिखा हुआ है और उसमें कुछ अंश त्रुटित भी हो गया है, उसके लिए हुए वो टोटल संख्या होगी उनकी अक्षरों की। और यहाँ तो रचना का यानी प्रकाशित रचना का 2.25 लाख जितने प्रकाशित हो चुके उसका प्रमाण बताया, क्योंकि देखो 10,000 के ऊपर पृष्ठ संख्या ही हो चुकी। धवला का प्रथम भाग सन 1939 में प्रकाशित हुआ था और अब सन 1958 में उसका अंतिम 16वां भाग और महाबंध का अंतिम 7वां भाग प्रकाशित हो रहा है। देखो हम कितने लकी कि हमें रेडीमेड मिल गया। इस प्रकार गत 18-19 वर्षों में जो यह विपुल साहित्य व्यवस्थित रीति से प्रकाशित हो सका, इसे इस युग के विशेष साहित्यिक अभिरुचि का ही प्रभाव कहना चाहिए। जैन तीर्थंकरों द्वारा उपदिष्ट आचारांग और द्वादशांग श्रुत के अंतर्गत जिस 12वें अंग दिट्ठीवाद यानी दृष्टिवाद का समस्त जैन परम्परानुसार लोप हो गया है, उसके एक अंश का अर्थोद्धार आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व भगवान पुष्पदंत और भूतबलि ने षटखंडागम सूत्रों के रूप में किया था। इसी यानी महान प्रकृति प्रभुत से ये सब निकला। इसी महान घटना की स्मृति में यानी वो अग्रणी पूर्व के कुछ उसका एक वस्तु अधिकार में से भाग निकला, और जो समय सारादी निकले वो ज्ञान प्रवाद पूर्व में से निकला। देखो 12 अंग मालूम है तो 12वें अंग में 14 पूर्व होते हैं, उसमें पहले का नाम है अग्रणी पूर्व, ऐसे वो 14 अलग अलग पूर्व है, उसमें से पहले पूर्व में से उसमें भी बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं ना, उसको वस्तु कहते हैं। एक अंग में इतने पूर्व, एक एक पूर्व में इतनी वस्तु होती है, वस्तु नहीं उसके चैप्टर का नाम ही वस्तु है, और उस एक एक वस्तु में वो प्रावृत नाम के और उसके सब डिविजन्स होते हैं। तो ये अग्रणी नाम का पूर्व है और उसमें जो कुछ पांचवी वस्तु अधिकार है उसमें से जो कुछ महाकर्म प्रकृति प्रावृत है सब उसका नाम है, उसमें से ये सारा कर्णानुयोग के ग्रंथ निकले। यानी षटखंडागम उसके क्योंकि उनको उसका ज्ञान था, बाकी का थोड़ा थोड़ा था पर इनका तो विशेष ज्ञान था। और कुनकुंदाचार्य ने जो समय सारादी लिखे है तो उनके जो गुरु परंपरा से उनको किसका ज्ञान अवेलेबल हुआ था, ज्ञान प्रवाद पूर्व। ऐसे 14 पूर्व अलग अलग है, यानी किसी एक अंग का पूरा ज्ञान नहीं रहा ना, दृष्टिवाद का पूरा ज्ञान नहीं रहा, उस अंग का कुछ पार्ट, यानी किसी पूर्व का उनको ज्ञान था, किसी पूर्व का किसी अन्य आचार्यों को ज्ञान रहा, उसमें से वो बातें निकली। अग्रणी पूर्वक इन्हें वस्तु में से पांचवी वस्तु उसमें प्राभूत पांच।
तो 11 पूर्व में सब यही बातें होती है सब?
नहीं नहीं नहीं, वो तो उसमें अलग अलग होती है 11 अंगों में। देखो ये क्या है, उसके एक अंश का अर्थोद्धार आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व भगवान पुष्पदंत और बुधबलि ने षटखंड नगम सूत्रों के रूप में किया था। इसी महान घटना की स्मृति में ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी की तिथि आज तक शुद्ध पंचमी या ऋषि पंचमी के नाम से मनाई जाती है। वर्तमान वीर निर्वाण संवत 2484 की, यानी वीर निर्वाण होकर कितने साल हुए उसको संवत शुरू हुआ। शुद्ध पंचमी इस दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। इस वर्ष में वही षटखंडागम शताब्दियों तक शास्त्र भंडार में निरुद्ध रहने के पश्चात पुनः प्रकाश में आया, इन तब जाके इसके इतना प्रकाशित हुआ। वो तो पहले निकालने के लिए कोई किसी को परमिशन ही नहीं थे, किसको देते ही नहीं थे, बस लिखवाते थे कुछ सालों बाद। ये शांति सागर जी महाराज हुए उनका तो प्रभाव बहुत रहा, तो उनके कारण ये सब बाहर निकला और फिर उसको ताम्रपट पर भी लिखवाया गया, वो सारे सुरक्षित रखे फल्टर में, एक मंदिर बनाया उसका सिद्धांत मंदिर का। और फिर वो फूलचंद जी शास्त्री आदि जो अनेक विद्वानों ने उसका अर्थ निकाला, उसको कितनी बार संशोधन किया उसका, फिर
ये सब प्राकृत में रहता होगा।
हाँ सब प्राकृत में ही था ना, अब इसमें से कितने अक्षर गए होंगे, अभी हम जो लिख आप स्वयं भी एक देखकर लिखो उसमें से कितने शब्द इधर उधर हो जाते, तो इतने केयरफुली भी लिखा होगा, उसको भी विद्वानों ने इतनी बार जांचा है, तो उसमें से जो कुछ निकली बात, हमें तो सब रेडीमेड माल मिला है सामने। प्राचीन साहित्य के प्रकाशन की यह सफलता बड़ी संतोषजनक है, किंतु यह समझ बैठना हमारी बड़ी भूल होगी, इस साहित्य के उद्धार का कार्य परिसमाप्त हो गया। इन परमागम ग्रंथों उनकी टीकाओं के संपादन प्रकाशन कार्य को प्राचीन साहित्य उद्धार कार्य की प्रथम सीढ़ी कहना उचित होगा। जैसा कि उक्त ग्रंथ भागों की प्रस्तावना में हम बारंबार कह चुके हैं, इनका पाठ संशोधन सीधा मूल ताड़पत्रीय प्रतियों पर से नहीं हुआ, किंतु उन पर से की हुई प्रतिलिपियों के आधार से ही विशेषता हुआ, जो उसकी कापी बनी उसी हुआ। जो थोड़ा बहुत मिलान सीधा ताड़पत्रीय प्रतियों से दूसरों के द्वारा कराया जा सका है, उससे संपादकों को पूरा संतोष नहीं हुआ, क्योंकि उसमें तो देखने वालों को कितना नॉलेज था क्या है, देखते भी है तो वो भूले निकलनी चाहिए, एक जन पड़ेगा दूसरा वो अशुद्ध पड़ेगा और दूसरा मिलान कर रहा है तो क्या होगा, ख्याल में आती ना। तथापि उस थोड़े से मिलान के द्वारा ही यह सिद्ध हो चुका है कि समस्त उपलब्ध ताड़पत्रियों से मिलान कितना आवश्यक और महत्वपूर्ण है। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, मूल बिद्री में षटखंडागम की एक संपूर्ण और दो खंडित ताड़पत्रीय प्रतियां हैं। इनके पाठों में भी परस्पर कहीं कहीं भेद है, जैसा धवला भाग 3 में प्रकाशित पाठांतरों से देखा जा सकता है। सत्प्ररूपणा के सूत्र 93 के पाठ के भेद संबंध में वह उतना मतभेद और बखेड़ा कभी न उत्पन्न होता यदि प्रारंभ से ही हमें ताड़पत्रीय प्रतियों के मिलान की सुविधा प्राप्त हुई होती, और वह सब विवाद तभी समाप्त हो सका जब हमारे द्वारा अनुमानित पाठ का ताड़पत्रीय प्रतियों से पूर्णतः समर्थन हो गया। तात्पर्य कि जब तक एक बार इस संपूर्ण प्रकाशित पाठ का ताड़पत्रीय प्रतियों अथवा उनके चित्रों से विधिवत मिलान कर मूल पाठ अंकित न कर दिए जाएंगे, तब तक हमारा यह संपादन प्रकाशन कार्य अधूरा ही गिना जाएगा और उन मूल प्रतियों की आवश्यकता व अपेक्षा बनी ही रहेगी। पाठ संशोधन पूर्णतः प्रामाणिक रीति से संपन्न हो जाने के पश्चात इन ग्रंथों के विशेष अध्ययन की समस्या सम्मुख उत्पन्न होती है, इन ग्रंथों का विषय कर्म सिद्धांत है, जो जैन धर्म और दर्शन का प्राण कहा जा सकता है। यह विषय जितने विस्तार, जितनी सूक्ष्मता और जितनी परिपूर्णता के साथ इन ग्रंथों में, उनके सूत्रों और रीकाओं में वर्णित है, उतना अन्यत्र कहीं नहीं। इसका जो हिंदी अनुवाद और साथ साथ थोड़ा बहुत तुलनात्मक अध्ययन व स्पष्टीकरण इस प्रकाशन में किया जा सका है, वह विषय प्रवेश मात्र ही समझना चाहिए। इस विषय से हमारा उत्तरकालीन समस्त साहित्य ओतप्रोत है। दिगंबर श्वेतांबर साहित्य में समान रूप से अनेक ग्रंथों में कर्म सिद्धांत की नाना शाखाओं और नाना तत्वों का प्रतिपादन पाया जाता है। इस समस्त कर्म सिद्धांत संबंधी साहित्य का ऐतिहासिक क्रम से अध्ययन करना आवश्यक है, जिससे इसके भिन्न तत्वों और नाना मतों का विकास स्पष्ट समझ में आ सके और उसका सर्वांग संपूर्ण व्याख्यान आधुनिक रीति से किया जा सके। भारतीय साहित्य में कर्म सिद्धांत की चर्चा इतनी व्यवस्थित रूप में अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलती है। जिन्होंने हमें विपुल दानों द्वारा हार्दिक उत्साह के साथ इन ग्रंथों का संपादन प्रकाशन कराया है, हम भली भांति जानते हैं कि वे साहू शांति प्रसाद जी और उनकी धर्मपत्नी रमा रानी जी किसी व्यापारिक बुद्धि से प्रभावित नहीं हुए, किंतु शुद्ध धार्मिक और साहित्योद्धार की भावना से ही प्रेरित थे। अतः हम आशा ही नहीं किंतु विश्वास भी करते हैं, वे अपने विशुद्ध और उच्च कार्य के उक्त अवशिष्ट अंशों पर अवश्य ध्यान देंगे और ऐसी योजना बना देंगे जिससे वह कार्य निर्विलंब प्रारंभ होकर संतोषजनक रीति से गतिशील हो जावे। इस साहित्योद्धार की जो यह एक मंजिल इस ग्रंथ के प्रकाशन के साथ समाप्त हो रही है, उसके लिए हम मूढ़ बिद्री के सिद्धांत बसदी के भट्टारक जी और अन्य सब अधिकारियों, प्रतिलिपियों, स्वामियों, संपादकों, प्रकाशकों एवं अन्य विद्वानों को हार्दिक धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस महान कार्य की सफलता में सहयोग प्रदान किया है। हीरालाल जैन और आने उपाध्याय ने एन उपाध्याय, ये एन उपाध्याय समंत भद्र के पहले तीन शिष्यों में से एन उपाध्याय प्रधान संपादक। हाँ, ये हीरालाल जैन जो अभी बता रहे हैं ना, ये भोपाल में मिली थी माधुरी जैन, उनके मौसा है ये, तो बता रही थे हीरालाल जैन जिन्होंने वो किया है वगैरह वगैरह। संपादकीय पढ़ेंगे हाँ, अभी इनमें से कोई नहीं हो गए ना, संपादकीय प्रदेश बंध का मूल प्रकृति प्रदेश बंध और उत्तर प्रकृति प्रदेश बंध के 24 अनुयोग द्वारों में से परिमाण अनुयोग द्वार तक का भाग संपादन होकर अनुवाद के साथ प्रकाशित हुए लगभग 3 माह हुए हैं, यानी वो छठा भाग। उसके कुछ ही दिन बाद उसका शेष भाग संपादन होकर अनुवाद के साथ प्रकाशित हो रहा है। पूर्व भाग के साथ यह भाग भी मुद्रित होने लगा था, इसलिए इसके प्रकाशित होने में अधिक समय नहीं लगा है। पूर्व भागों के समान इस भाग के संपादन के समय भी हमारे सामने 2 प्रतियां रही है, एक प्रेस कापी और दूसरी ताम्रपत्र प्रति। ताम्रपत्र है, ताड़पत्र नहीं। मूल ताड़पत्र प्रति तो अंत तक नहीं प्राप्त हो सकती। इस भाग के संपादन में उक्त दोनों प्रतियों का ताम्र है, वो तांबे के उसके जो पत्ते बनाए थे उसके ऊपर उन्होंने उत्कीर्ण किया उसको। ताम्रपत्र तो मैंने बताया, तो वो जो उसमें रखा है फल्टन में रखा है वो ताम्रपत्र के ऊपर, और एक तो प्रेस का। ताड़पत्र तो मिला ही नहीं, दोनों प्रतियों के वो ताड़पत्र वो मिलान के लिए मिला नहीं। इस भाग के संपादन में उक्त दोनों प्रतियों का समुचित उपयोग हुआ है। दोनों प्रतियों की सहायता से जिन पाठों का संशोधन करना संभव हुआ, उनका संशोधन करने के बाद भी बहुत से ऐसे पाठ रहे हैं जो चिंतन द्वारा स्वतंत्र रूप से सुझाए गए हैं। इस प्रकार जितने भी पाठ मूल में सम्मिलित किए गए, उन्हें स्वतंत्र रूप से ब्रैकेट के अंदर लिखलाया गया है। ये जहां जहां ब्रैकेट है ना, उनके अपने सुझाव है। और जिन पाठों का संशोधन नहीं हो सका है, उन्हें वैसा ही रहने दिया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार यही कहना पड़ता है कि मूढ़ बिद्री में महाबंध की एक ही ताड़पत्र प्रति उपलब्ध है, वह भी अधिक मात्रा में त्रुटित और स्खलित है। उसमें भी प्रदेश बंध पर स्खलन का सबसे अधिक प्रभाव दिखलाई देता है। इस भाग में ऐसे अनेक प्रकरण हैं जिनका यत्किंचित अंश भी शेष नहीं बचा है। स्वामित्व आदि के आधार से उनकी पूर्ति करना भी संभव नहीं था, इसलिए उन्हें हमने त्रुटित स्थिति में ही रहने दिया है। जो हमने अभी तक जितने फुलस्केप्स लिखे करीबन 80 से 100, महाबंध की उपलब्ध हुई ताड़पत्री प्रति कितनी पुरानी इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो सकी है। स्थिति बंध और अनुभाग बंध के अंत में अलग अलग प्रशस्ति उपलब्ध होती है। उन दोनों प्रशस्तियों से इतना बोध अवश्य होता है कि सेन की पत्नी मल्ली कौवा ने श्री पंचमी व्रत के उद्यापन के फलस्वरूप महाबंध को लिखाकर आचार्य मागनंदी को भेंट किया। इसी आशय की एक प्रशस्ति प्रदेश बंध के अंत में भी आई है, उसे हम अनुवाद के साथ आगे उद्धृत कर रहे हैं। स्थिति बंध और प्रदेश बंध के अंत में आई हुई प्रशस्ति में मेघचंद्र व्रतपति का विशेष रूप से उल्लेख किया है और मागनंदी व्रतपति को उनके पाद कमलों में आसक्त बताया है।
व्रतपति
कोई आचार्यों के नाम होंगे उनके व्रतपति, वही वही हो गए ना, हो सकते हैं। अरे बहुत पहले तो ये तो ही बात है ना, ये तो ओरिजिनली 2000 वर्ष पूर्व ली कि उसके बाद उन्होंने उनकी प्रतियां प्रतिलिपि करके उसको यानी उन्होंने लिखवाया उसको और उनको अर्पण की इस तरह से। मागनंदी तो पुरुष है, शिष्य हो गए मेघचंद्र के, मागनंदी शिष्य हो गए। मेरा विचार था कि इन प्रशस्तियों के आधार से मैं कुछ लिखूं, किंतु वर्तमान में इस प्रकार का प्रयत्न करना असामयिक होगा, क्योंकि धवला और संभवतः जयधवला के अंत में पुस्तक दान करने वाले की जो प्रशस्ति उपलब्ध होती है उसके अनुवाद के साथ प्रकाश में आने के बाद ही इस पर सर्वांग रूप से विचार होना उचित प्रतीत होता है। यह हम पिछले भागों की प्रस्तावना में बतलाए हैं कि स्थिति बंध के मुद्रित होने के बाद ही हमें ताम्रपत्र प्रति उपलब्ध हो सकी थी, यानी ताम्रपत्र भी उनके नहीं मिला था, इसलिए अभी तक उस प्रति से स्थिति बंध का मिलान होकर न तो पाण्ड भेद लिए जा सके है और न शुद्धि पत्र ही तैयार हो सका है। प्रकृति बंध का संपादन और अनुवाद तो हमने किया ही नहीं है, इसलिए उसके संबंध में हम विचार ही करने के अधिकारी नहीं है। तो किसने किया? इतना अवश्य ही संकेत कर देना अपना कर्तव्य समझते हैं कि समस्त महाबंध का योग्य रीति से संपादन होकर प्रकाश में आने में जो थोड़ी बहुत न्यूनता रह गई है उस ओर ध्यान देना जाना आवश्यक प्रतीत होता है। प्रसंग से हम यह आशा करें तो कोई अत्युक्ति न होगी कि समस्त महाबंध का ताड़पत्र प्रति से मिलान होने की ओर भी भारतीय ज्ञानपीठ का ध्यान जाएगा। निगम्बर परंपरा में शठखंडागम और कषाय प्रावृत मूल श्रुत माने गए। देखो मूल श्रुत जो है ना, ओरिजिनल श्रुत, इसलिए इनके प्रत्येक पद और वाक्य की रक्षा करना दिगंबर संघ का कर्तव्य है। इस भाग के संपादन के समय भी हमें श्रीयुक्त पंडित रतन चंद्र मुख्तार और पंडित नेमी चंद्र जी वकील सहारनपुर वालों ने सहायता प्रदान की है, इसलिए हम उनके आभारी हैं। ये मुख्तार कोई अलग है? हाँ, ये अभी जो बेनर है वो अलग। इस भाग की समाप्ति के साथ महाबंध समाप्त हो रहा है। अन्य अनेक अड़चनों के रहते हुए भी इस कार्य को संपन्न करने के अनुकूल हमारा मनोबल बना रहा, यह वितराग मार्ग की उपासना का ही फल है। वस्तुतः बाह्य साधन सामग्री अहिक है, अंतरंग का निर्माण हुए बिना केवल उसकी साधना मार्मार्थिक जीवन के निर्माण में सहायक नहीं हो सकती। यह बात पद पद पर अनुभव में आती है। हमें ऐसे गुरुतर कार्य को यानी बहुत महान कार्य, गुरुतर कार्य ना बड़ा कार्य के निर्वाह करने का सु अवसर मिला और हम उसका समुचित रीति से निर्वाह करने में सफल हुए, इसके लिए हम अपने भीतर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। सही है, इन्होंने वितराग मार्ग को जीवन में उतार कर उसका प्रकाश किया। वे महापुरुष सबके द्वारा तो वंदनीय है ही, किंतु जो उस मार्ग पर यत्किंचित चलने का प्रयत्न करते हैं और जो ऐसे कार्य में समुचित सहाय प्रदान करते हैं वे भी अभिनंदनीय हैं। किम अधिकम पूर्णचंद सिद्धांत शास्त्री। अब ये जो अभी बात बैठे ना कि उन्होंने लिखवा कर प्रशस्ति लिखी है, वो यहाँ उद्धृत करते हैं, इसको पढ़कर फिर हम आगे बढ़ेंगे। पढ़ेंगे श्रीमल धारी मुनीन्द्र पदामल सरसी रूह भृंग नमलिन कित्ते प्रेमं मुनिजन कैरव सोमने नलमाघ नंदियति पति एसेदम। नीचे उसका अर्थ देखते हैं। श्रीमल धारी मुनीन्द्र के निर्मल चरण रूपी कमल में भौरे के समान सुशोभित होने वाले निर्मल प्रेमी और मुनिजन रूपी कुमुद के लिए चंद्रमा के समान माघ नंदी यति इंद्र हुए। यतिपति यानी मुनियों के आचार्य। अभी दो नंबर को पढ़ेंगे। यति यानी मुनिराज, उनके पति यानी उनके मुख्य यानी आचार्य। माघ नंदी यति इंद्र लिखे ना, यति उनके इंद्र है ने, यतियों में से मुख्य आचार्य। जित पंचेशु प्रतापानलन मल तरोत्कृष्ट चारित्र रारा जित तेजम भारती भासुर कुछ कलशा लीढ़ भाभा रनुत्ना यततारोदार हारम समदम नियमाल कृतम माघनंदी व्रतिनाथम शारदा भ्रोज्वल विशद यशो वल्लीरी चक्रवालम। जिन्होंने मनमत को जीत लिया यानी काम को जीत लिया।
ये तो ऊपर
अभी उसमें संस्कृत भी होगा और वो उनका कन्नड़ी भी होगा कुछ ऐसा लगता है, मूल संस्कृत ही है। जिन्होंने मनमत को जीत लिया है यानी काम को जीत लिया है। जित पंचेशु भी लिखा और नीचे जित प्रपंचेशु भी दूसरा पाठ लिखा है। जिनकी प्रताप रूपी अग्नि व्याप्त हो रही है, प्रताप अनल नमल तरोत्कृष्ट, जिनका तेज निर्मल तर उत्कृष्ट चारित्र से शोभायमान हो रहा है। उत्कृष्ट चारित्र दारा जो सरस्वती के प्रकाशमान कुछ रूपी कलश में संलग्न है, जो पता नहीं सरस्वती के प्रकाशमान कुछ रूपी कलश में संलग्न है, जो प्रकाशमान है नवीन और दीर्घतर उदार हार स्वरूप है। उदार हार अभी कितने अपने को पता नहीं लगते। शम दम और नियम से अलंकृत है। शमय ने उनका तो उपशम भाव है, शांत भाव। दमय ने किसका दम कर रहे है, दमन करना है, नष्ट करना। तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया है तो दम कहेंगे। और नियम से अलंकृत है उनके जो कुछ व्रतादि है, इसलिए शम दम और नियम अलंकृत है। मुनिराज का वर्णन है ना यहाँ। तथा जो शरतकालीन मेघ के समान उज्जवल और विस्तृत यश समूह से विभूषित है, ऐसे माघ नंदी यतीन्द्र हुए। नीचे तीन नंबर, उसमें से बीच बीच में कुछ त्रुटित है। जिन वक्त्राम भोज विनिर्गत पितर नतराध्यांत किम जल्क सुस्वादन, बीच में कुछ गया है। ज पदन तो भूपेन्द्र कोटि रसेना, फिर कुछ गया है। तिनिकाय भ्राजितांग्री द्वय नखिल जगत भव्य नीलोत्पलाल्हार दनताराधीशने केवल में भुवनदोल माघनंदी व्रतीन्द्रम। जो जिनेन्द्र देव के मुखरूपी कमल से निकले हुए हितकारी और मान्य सिद्धांत रूप कमल के पराग का रसाद्वादन करने में भौरे के समान है, अनेक पृथ्वीपति जिनके चरण कमलों में नमस्कार करते हैं, जिनके पदयुगल अनेक सेनापतियों के मुकुट समूह से सुशोभित हो रहे हैं और जो समस्त भव्य रूपी नील कमलों को आह्लादित करने के लिए चंद्रमा के समान हैं, ऐसे एकमात्र माघ नंदी व्रतपति हुए। वरराधांतां मृतां भौ निधि तरल तरंगोत्कर क्षालितांत करणम श्री मेघचंद्र व्रतिपति पद पंके रुहा सप्त षट चरणम तीव्र प्रतापो धृत विनत लोपेत पुष्पे भृस्सम हरणम सैद्धांतिकाग्रेसर नेने नेगल्दम मागनंदी व्रतींद्रम। जिनका अंतकरण श्रेष्ठ सिद्धांत रूपी अमृत जल निधि के तरल तरंग कणों से प्रक्षालित हुआ है, जो श्री मेघचंद्र व्रतिपति के चरण रूपी कमल में आसक्त भौरे के समान है, जो तीव्र प्रतापी है, जिन्होंने विशाल बलशाली काम को जीत लिया है और सैद्धांतिकों में अग्रेसर है, ऐसे माघनंदी व्रतींद्र हुए। सिद्धांत को मानने वाली ऊपर पांच नंबर श्री पंचमियम नोन्तुद्यापनम माड़ीबरेसी राधांत मना रूपवती सेनवधु जितकोपम श्री माघनंदी यति गित्तल भद्रम भूयात वर्धता शासन। सिद्धांत को मानने वाली रूपवती सेन की पत्नी ने श्री पंचमी व्रत का उद्यापन कर इस ग्रंथ को लिखवा कर जितक क्रोध माघनंदी यति को समर्पित किया। मैंने व्रतों के उद्यापन में वो दान देने की पद्धति है, तो उन्होंने वो लिखवा कर उनको दे दिया। मंगल हो जिन शासन की वृत्ति हो। व्रति
करने में मुख्य है,
व्रतियों में जो अग्रस व्रतिपति व्रति यानी मुनिराज उनमें जो श्रेष्ठ है। अब यहाँ आते हम वो अंत में लिखते हैं ना प्रशस्ति, इसलिए उसमें कुछ अंश निकल गया। श्री भगवंत भूदवली भट्टारय पणिदो महाबंधो चौथो पदेश बंधाई आरो। ये तो हमारे जो छठी पुस्तक से ही बात चल रही है, इसको ही सातवें पुस्तक में, क्योंकि उत्तर प्रकृति बंध में हम आए थे। अंतिम कौन सी प्ररूपना हुई थी? हाँ? ये तो हमने किया था। छठी पुस्तक में कौन सी बात आते है? छठी पुस्तक परिमाण हुआ था। संधिकर्ष के बाद हमने नाना जीवन की अपेक्षा भंग विषय देखा था। ये उत्तर प्रकृतियों के बारे में हमने जो डिराइव किया वो मूल प्रकृतियों के बारे में, क्योंकि हमने त्रुटित अंश को डिराइव किया ना, तो वही है हमारी। बाद में भागा भाग प्ररूपना देखी और परिमाण प्ररूपना देखी। उत्कृष्ट का परिणाम परिमाण जगन्य का वो हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करेंगे तो थोड़ा कैचअप हो जाएगा। उत्तर प्रकृतियों के बारे में बात है। अभी हमें क्षेत्र प्ररूपना जस्ट हमने मूल प्रकृतियों पर डिराइव करके देखी। अब यहाँ पढ़ेंगे क्षेत्र प्ररूपना। क्षेत्र प्ररूपना में तो नाना जीव ही आते हैं, परंतु यहाँ बात मूल प्रकृति की नहीं है, उत्तर प्रकृति की। नहीं नहीं ऐसा नहीं, किसी एक प्रकृति का अभी उत्तर प्रकृतियों में लगाना है। अभी उत्कृष्ट बंध करने वालों का क्षेत्र कितना होगा? अभी हमने मूल प्रकृतियों में क्या देखा? छह कर्मों का उत्कृष्ट बंध करने वाले का लोक का असंख्या प्रभाव, क्योंकि दसवें गुणस्थान में उत्कृष्ट प्रदेश बंध होता है, यहाँ छह कर्म बनते हैं। अभी यहाँ तो जो वहाँ बंधने वाली उत्तर प्रकृति है ना, उन्हीं में ये घटित होगा। इसे नाम कर्म तो हमने कह दिया कि लोक का असंख्या कर्म, परंतु नाम कर्म वहाँ कौन सा बनता है? मात्र यशस कीर्ति। नाम कर्म अन्य भी तो है ना, अभी नरक गति नाम कर्म बांधने वाले हो गए, या एक इंद्रिय जाति बांधने वाले, तो एक इंद्रिय जाति बांधने वाले जो है पूरे लोक में पाए जाएंगे, क्योंकि एक इंद्रिय भी एक इंद्रिय जाति बांधेगी। एक इंद्रिय सूक्ष्म एक इंद्रिय भी जो प्रकृतियां बांधते हैं वो बांधने वालों का तो पूरा लोक क्षेत्र हो जाएगा। तो अलग अलग मार्गणों में अलग अलग बात करेंगे, हम उसकी बात करेंगे। अभी इन्हें हमें क्या कैसे सोचना है उसको मैंने थोड़ा अंदाजा दे दिया, मैंने भी नहीं पढ़ाया, हम सब पढ़ेंगे अभी। तो क्षेत्र प्ररूपणा है, अभी तो हमको लिखना नहीं केवल पढ़ना है। क्षेत्र दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। हमेशा जैसे पहले उत्कृष्ट को लेंगे, उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से तीन आयु, वैकृत शरीर, पूरा वाक्य पढ़ेंगे फिर उस पर आएंगे। वैकृत षटक, आहार द्विक और तीर्थंकर प्रकृति का, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश बंद करने वाले जीवों का कितना क्षेत्र है, क्योंकि लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र है। अब यहाँ जो क्षेत्र की बात है, यहाँ तो मारणांतिक वगैरह नहीं लेंगे, जो वर्तमान में मारणांतिक करेंगे तो भी असंख्यात ही जीव है। ये कैसी है तीन आयु बांधने वाले, एट ए टाइम तो तीरियन चाय को छोड़ा, असंख्यात ही जीव बांधेंगे इसको, मैक्सिमम भी बांधेंगे। मनुष्य आयु को भी लब्धि पर्याप्त की आयु बांधने वाले जीव भी एट ए टाइम कितने होंगे, तो असंख्यात ही होंगे। और यहाँ तो उत्कृष्ट बांधने वाले कौन है, तो पंचेंद्रिय उत्कृष्ट बांधेंगे। अनुत्कृष्ट कौन बांधते, तो एकेंद्रिय भी बांधेंगे, अनुत्कृष्ट सूक्ष्म भी बांधेंगे। भले सूक्ष्म जीव पूरे लोक में है, अनंत है, फिर भी मनुष्य आयु कितने बांधेंगे, असंख्यात ही बांध सकते हैं। नहीं बात, इसलिए प्रदेश बंद, यहाँ प्रदेश बनने की बात। अभी अपना सातवा पुस्तक है प्रदेश बंद का,
प्रदेश
हाँ, योग वो किससे नक्की होता है, योग से। योग किसका ज्यादा होता है, संघी पंचेंद्र। और अनुत्कृष्ट के बारे में सारे आ गए, लेकिन ये सही सब कुछ आ गया, अनुत्कृष्ट के लिए तो सब कुछ आ जाएगा। और उत्कृष्ट बंध कौन करता है, जिसको मैक्सिमम योग होता है वो करता है। उसमें भी कौन सी प्रकृति कहाँ बंधी जाती है उत्कृष्ट, ये थोड़ा हमको बाद में सोचना है। जैसे ज्ञानावरण कहाँ बंधेगा उत्कृष्ट प्रदेश बंध, दसवें में बंधेगा। हाँ, वो मैंने अभी हमने जो अभी पढ़ रहे थे ना प्रस्तावना, उसमें हमने पूछा कि कहाँ बंधा उत्कृष्ट बंध कहाँ होता है, तो वहां तो हम स्थिति बंध की बात कर रहे थे, अनुभाग की बात, अनुभाग की बात कर रहे थे। तो दसवें में तो जघन्य अनुभाग बंद होगा, तो देखो हमने ये तीन आयु की बात देखी, असंख्या तीजु बांधेंगे, संगी पंचेंद्रिय बांधेंगे, और क्षेत्र है स्पर्शन में तो बिहार को भी ले सकते हम मनुष्य आयु बांधने वाले के लिए, ये यहाँ वो नहीं लेना है, यहाँ तो क्षेत्र बस वर्तमान का। वैकृत षटक, वैकृत षटक में किसको लेना याद है तेजल,
षटक
बहुत अच्छा। तो इसको बांधने वाले कौन है, पंचेंद्रिय तीरियंच और मनुष्य, उसमें भी उत्कृष्ट बांधने वाले तो संगी पंचेंद्रिय होगी उत्कृष्ट योग के साथ, अनुत्कृष्ट बांधने वाले असंगी भी होगे, तो वो भी संख्या असंख्याति जीव है, लोक के असंख्यात भाग। आहार उद्वेग का तो बंध मनुष्य करेंगे, लोक के असंख्यात भाग। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले तो कौन कौन से जीव है, हाँ तीनों गति के। तो उत्कृष्ट प्रदेश बंध कौन करेंगे, जिनका योग ज्यादा है, तो उनमें से वो तो अनुभाग की बात है, वो तो स्थिति की बात है। नरक के सन्मुख वाला स्थिति ज्यादा बांधेगा, क्योंकि उसके तो अभी मिथ्यात्व के सन्मुख है ना, वो वही बात मैं आपकी नहीं की ना, तो उसको हमने कब याद किया था, अनुभव तो जघन्य होगा, स्थिति उत्कृष्ट होगी, प्रकृति प्रशस्त है ना। अभी हमको तीनों को एक साथ में रख के देखना पड़ेगा, स्थिति अनुभव और प्रदेश।
तो इसमें प्रदेश में ज्यादा कौन करेगा, जिसका योग ज्यादा है वो,
हाँ जगने के लिए वो तो उपभोग के पहले समय ऐसा सोचना पड़ेगा, ख्याल में आती बात। और यहाँ पर भी हमको ऐसा कि उत्कृष्ट प्रदेश बंधक कब होता है, जब प्रकृतियां मिनिमम बंधेगी, अनुभव योग कहीं पर हो जहाँ मिनिमम प्रकृति बंधेगी, कौन सी, नाम कर्म के, नाम कर्म के स्थान, ऐसा नहीं नाम कर्म कीर्तन का प्रकृति बांधने वाला कौन है, मनुष्य बांधेगा तो कितनी प्रकृतियां बांध सकता है, कीर्तन देव की साथ 29 बांधेगी और देव होगा तो 30 के साथ बांधे, उत्कृष्ट प्रदेश बंधे कौन कर सकता है, मनुष्य, बाकी तो संख्या भाग इन करेंगे, नहीं कहीं पर भी बांधेगा, चौथी माला भी बांध सकते हैं। देखो देखो मैं आपको स्वामित्व बताती हूँ, उत्तर प्रकृतियों के स्वामित्व, क्योंकि वो हमारे बहुत बड़ा काल बीच में गया ना, वो हम डिराय करते करते, नहीं नहीं छठे में आपके पास छठी पुस्तक है तो उसमें बता देते हैं, ओघ में से हम तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले का स्वामित्व देखते हैं। आपके पास है क्या, नहीं है, स्वामित्व प्ररूपना, हाँ देखो पेज नंबर 92 से शुरू हुआ था स्वामित्व, हाँ क्योंकि उत्तर प्रकृतियों में स्वामित्व देखना है हमको, और ये बार बार यही बात आने वाली है, कल छठी पुस्तक भी लाना तो हम एक बार उसको पढ़ेंगे, अभी पढ़ने से फायदा नहीं, वो भी दो नहीं और अश्विन भी नहीं है, हम केवल तीर्थंकर प्रकृति का आपको बताते उसको बताते, फिर कल हम इसमें से सभी को एक बार पढ़ लेंगे ना तो ये हमारा रिवाइज बन जाएगा, गतियों के बारे में नाम कर्म के बारे में हम देखते हैं यहाँ पर, तीर्थंकर का उत्कृष्ट करने वाला चाहिए ना, तीर्थंकर प्रकृति के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है, सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, नाम कर्म की 29 प्रकृतियों के साथ 7 कर्मों का बंधन, आयु का नहीं लेगा नहीं तो उसमें से कटौती हो जाएगी उसकी, उत्कृष्ट योग से युक्त अन्यतर मनुष्य समय दृष्टि जीव तीर्थंकर प्रकृति के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी, हाँ कहीं पर यानी उसके 8वें में योग होगा या 4थे में, ऐसा नहीं कुछ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, योग के बारे में ऐसा है, उत्कृष्ट योग तो अरिहंत को भी हो सकता है, 4थे गुण स्थान वाले को भी हो सकता है, संगी पंचेंद्रियों के योग योग कहीं पर भी हो सकता है, यानी यहाँ समय को प्राप्त किया तो योग कम होगा बढ़ेगा ऐसा कुछ नहीं है, योग का उससे रिलेशन नहीं है, अनुभाग का और स्थिति का रिलेशन है, वहां हमको गुणस्थानों की बात, जहां विशुद्धि ज्यादा है वहां स्थिति कम बनती है, और अनुभाग में प्रशस्त अनुप्रशस्त का भेद होगा, इसलिए तो हमने देखा तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट भी और अनुत्कृष्ट भी करने वाले जीवों का लोक के असंख्यात विभाग, उत्कृष्ट की तो बात समझे मनुष्य कर रहे हैं, अनुत्कृष्ट कौन करेंगे, देव भी करेंगे, नारकी भी करेंगे, मनुष्य भी करेंगे, तीन गति के करेंगे, उन अपने अपने स्वस्थान में करेंगे, और उनका रहने का ठिकाना कितना है, लोक का स्थान, यहाँ वो विहार वाली बात हमको नहीं लेनी है, ख्याल में वो स्पर्शन में आ जाएगी, ये पैराग्राफ इतना पूरा कर देते हैं, शेष प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश बंध करने वाले जीवों का कितना क्षेत्र है, तो कहते लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र है, क्योंकि जो प्रकृति हमने देखी थी ये पंचेंद्रीय तीर इंच उत्कृष्ट बांधेंगे, अन्य सभी प्रकृतियां तो 10वें में बंधने वाली हो या अन्य कहीं पर भी, नारकी बांधे या देव बांधे या तीर इंच बांधे, संगी पंचेंद्रीय उसको उत्कृष्ट बांधेंगे, इसलिए लोक का असंख्यात भाग लेना, और अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध करने वाले जीवन का कितना क्षेत्र है, सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र है, क्योंकि ये प्रकृतियां छोड़े तो बाकी प्रकृतियों का बंध एक इंद्रिय अधिक उनको भी होता है तो पूरा लोक प्रमाण क्षेत्र। इसी प्रकार ओग के समान यानी ओग में जो जो बातें घटित हुई ना कि जो ऊपर बताई हुई प्रकृतियों का लोक का संख्या तो और बाकी का पूरा लोक अनुत्कृष्ट का, वे और कहाँ कहाँ घटित होती है, तो सामान्य तिरेंज। अब यहाँ जो एप्लीकेबल प्रकृति है उसको ही समझना, यानी यहाँ सामान्य तिरेंज में तीर्थंकर को और आहरद्वीप को नहीं लेना, इसमें जो प्रकृति बनती है उसके बारे में समझना। ऐसा का योगी, औदारिक का योगी, औदारिक मिश्र का योगी। अब औदारिक मिश्र का योगी में न आहारद्वीप बनेगा, परंतु तीर्थंकर बन सकती है चौथे गुणस्थान वाले को, और वैकृत शटक भी, वैकृत शटक में से वैकृत चतुष्क बन सकता है, नरक गति नहीं बनेगी, समय दृष्टि को बनेगी, परंतु वो भी एट ए टाइम मैक्सिमम असंख्या जीवी हो सकते हैं और वो भी अपने स्वस्थान नहीं होंगे। कार्मण का योगी, नपुसक वेदी, यानी ये ऐसे लिए कि अनुत्कृष्ट के लिए पूरा लोग घटित होता है। क्रोधावी चार कषाय वाले, मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, असंयत, अचक्षु दर्शनी, कृष्ण लेशा वाले, नील लेशा वाले, कापोत लेशा वाले, भव्य अभव्य, मिथ्या दृष्टि, असंगी, आहारक और अनाहारक जीवन में जानना चाहिए, क्योंकि ये पूरा लोक भी इसमें घटित हो जाता है। अब इसका विशेषा देखते हैं। वो उसे सब प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश बंध अपने अपने स्वामित्व के अनुसार संगी जीव, और तीन आयु आदि बारह प्रकृतियों का अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध किन्हीं का असंगी जीव आदि तथा किन्हीं का संगी जीव करते, जो जो हमने स्वामित्व दे, अभी हम कल उसको फिर दोबारा देख लेंगे छठी पुस्तक के आधार से। इसलिए सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेशों का बंध करने वाले जीवों का क्षेत्र और तीन आयु आदि के अनुत्कृष्ट प्रदेशों का बंध करने वाले जीवों का क्षेत्र लोक के असंख्यात भाग प्रमाण कहा है। यद्यपि मनुष्य आयु का बंध एक इंद्रिय आदि भी करते हैं, ऐसे जीव असंख्यात से अधिक नहीं होते हैं और इनका क्षेत्र लोक के असंख्यात वे भाग प्रमाण से अधिक नहीं होता, इसलिए इस अपेक्षा से भी उतना ही क्षेत्र कहा है। उक्त बारह प्रकृतियों के सिवा शेष प्रकृतियों का अनुत्कृष्ट प्रदेश बंद करने वाले जीवों का क्षेत्र सर्वलोक है, यह स्पष्ट ही है, क्योंकि इनका एकेन्द्रियादि अनंत जीव बंद करते हैं और वे वर्तमान में सर्वलोक में पाए जाते हैं। यह सामान्य तिरिंच आदि अन्य जितनी मार्गणाएं गिनाई है उनमें बंध को प्राप्त होने वाली ये महत्व की बात है। अपनी अपनी प्रकृतियों के अनुसार यह क्षेत्र प्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उनमें ओग के समान क्षेत्र जानने की सूचना की। यही रुकेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तकनम सदा देत हो।